नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों से देश की वैश्विक भागीदारी मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने विदेश मंत्रालय के 11वें मिशन प्रमुख सम्मेलन में कल अपने विचार और सुझाव साझा किए। उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत की कूटनीतिक गतिविधियों का मार्गदर्शन किया। ये सम्मेलन 28 से 30 अप्रैल तक आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री को भविष्य के लिए तैयार कूटनीति, व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन को बढ़ावा देने तथा भारत की गाथा को व्यापक बनाने पर प्रस्तुतियां भी दी गईं। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था। उन्हें बिहार के बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने बुद्ध पूर्णिमा पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने आज लेह के चोग लमसर जिले के फोटांग में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने लेह में केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान से करगिल में 10,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले डेयरी संयंत्र का भी शिलान्यास किया। गृहमंत्री लद्दाख की दो दिन की यात्रा पर कल लेह पहुंचे थे। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आज से शुरू होकर 14 मई तक चलेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने मुंबई में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थ के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इनसे 1,745 करोड़ रुपए मूल्य की 349 किलोग्राम कोकेन जब्त की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये जमीन स्तर से शीर्ष स्तर तक की कार्रवाई का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां ब्यूरो ने एक छोटी खेप का पता लगाकर विशाल नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने इस ऐतिहासिक सफलता के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की टीम को बधाई भी दी। ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार और विनियमन संबंधी नियम 2026 आज से लागू हो गए हैं। इन्हें कल अधिसूचित किया गया था। ये भारत के तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य गेमिंग उद्योग में नवाचार और विकास को बढ़ावा देते हुए उपयोगकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरकार ने डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क में कटौती की है। ये कटौती आज से लागू हो गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार डीजल पर निर्यात शुल्क 23 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर 33 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मतगणना केंद्रों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस की याचिका रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक की नियुक्ति का अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक की नियुक्ति करना अवैध नहीं है। एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई दुनिया के सबसे बड़े तत्काल भुगतान मंच के रूप में उभरी है। ये भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार है। 11 अप्रैल 2016 को शुभारंभ के एक दशक बाद यूपीआई वैश्विक तत्काल भुगतान लेनदेन के लगभग आधे हिस्से को संचालित कर रहा है। एक रिपोर्ट।
यूपीआई लेनदेन वित्त वर्ष 2016-17 में 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 314 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यूपीआई से वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 66 करोड़ लेनदेन किए जा रहे हैं। इनका दैनिक मूल्य लगभग 86,000 करोड़ रुपए है। यूपीआई ने इस वर्ष मार्च में 2,264 करोड़ रुपए के लेनदेन के साथ अब तक का उच्चतम स्तर हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूपीआई को लेनदेन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी तत्काल भुगतान प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से जयपुर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।